नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार, पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भी धनराशि जारी की गई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तीर्थ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और लगभग 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पंजीकरण और GMVN गेस्ट हाउसों की लगातार बढ़ रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा में इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने यात्रियों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य जांच कराने, मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े और रेनकोट साथ रखने तथा यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की है। उधर केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा देर रात केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्रद्धालुओं ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, दर्शन लाइन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा अवधि के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
चंपावत के कथित नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार बदले की भावना से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। मामले में मिली शिकायत के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर SIT गठित की गई। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, काउंसलिंग और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच में पाया कि नामजद तीनों व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। वहीं मेडिकल परीक्षण में भी जबरदस्ती या संघर्ष के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार जांच में कुछ लोगों के बीच लगातार संपर्क के तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश माना जा रहा है। मामले में डिजिटल और फॉरेंसिक जांच अभी जारी है। चंपावत के कथित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में एसआईटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते एक नाबालिग को बहला फुसलाकर पूरे घटनाक्रम में शामिल करना गंभीर मामला है और ये समाज तथा कानून दोनों के खिलाफ अपराध है। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करता है, लेकिन कानून के दुरुपयोग को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
पता चला जैसे ही पूरी जांच और पड़ताल के बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि उस बेटी के साथ कुछ भी नहीं, ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। ये किसी व्यक्ति की पूरी तरह से साजिश रची गई थी और उस साजिश के तहत उस बेटी को मोहरा बनाया गया। तो निश्चित ही महिला आयोग ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर कारावास होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इसका
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है।
हरिद्वार जिले में संचालित मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में 23 मदरसों में मिड डे मील व्यवस्था और छात्र उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जबकि छात्र संख्या में अनियमितता मिलने पर 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना का संचालन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इन मदरसों के मार्च और अप्रैल माह के भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी मदरसों की विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ मदरसों में उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के बच्चों का दाखिला कराया गया है। प्रशासन अब इन बच्चों के सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जुटा रहा है। और अब एक नजर समाचार पत्र की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर अमर उजाला सेना के हवाले से लिखता है, आतंकियों की कोई पनाहगाह सुरक्षित नहीं। नवोदय टाइम्स की खबर है, LOC पर कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों व मत्स्य पालकों के साथ किए संवाद को सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को धामी का मंत्र, पहाड़ का दूध बनेगा ग्लोबल ब्रांड। इसी पर नवोदय टाइम्स मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखता है, पशुपालकों की आय बढ़ाने को सरकार संकल्पबद्ध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।